फिर परमेश्वर देखते हैं कि इस व्यक्ति ने भावी जन्म के निमित्तभूत किन कर्मों को याद रखा है, यानी भावी जन्म का क्या प्रारब्ध बनाया है इसने, स्वयं ही निर्धारण कर लेता है वो देख करके। याद रखने का ही नाम है निर्धारण करना। तो वो प्रारब्ध जिस 84 लाख प्रकार के शरीर में भोगा जाए ऐसे शरीर का निर्माण ईश्वर करते हैं, और वो वासनाएं याद रखी हुई जिसको स्वभाव कहा जाता है वे प्रवर्तक अच्छी तरह से जिस शरीर में रह करके बन सकती हैं, ऐसा शरीर प्रारब्ध का भोग भी हो सके और स्वभाव ठीक से प्रवर्तक भी बन सके जिस शरीर में इस जीव के जाने से, ऐसे शरीर का निर्माण ईश्वर कर लेते हैं। निर्माण करते हैं का मतलब एक प्रकार से उपनिषदों में बताया है एक भूत सूक्ष्म होता है, स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश, जिनको पंचाग्नि विद्या में आपने पहले पंचाग्नि विद्या सुनी, श्रद्धा शब्द से, आप शब्द से, सोम शब्द से कहा गया, वो है भूत सूक्ष्म, वो है स्थूल शरीर का बीज। और उसके उस भूत सूक्ष्म को संकल्प से ईश्वर भावी शरीर के रूप से परिणत कर लेते हैं, बना देते हैं, एक शक्ति डाल देते हैं उसमें कि इस व्यक्ति का भूत सूक्ष्म इस 84 लाख प्रकार के शरीर में से इस शरीर के रूप में परिणत हो जाए, ऐसा ईश्वर संकल्प करते हैं। और वे सत्य संकल्प हैं, ईश्वर ने संकल्प कर दिया तो उसे फिर जिस शरीर के रूप में परिणत होने का संकल्प किया है वही शरीर दिख जाता है मरने वाले जीव को, और वही शरीर दिखेगा और उसी को वो मैं के रूप में पकड़ लेगा। ईश्वर ने 84 लाख प्रकार के शरीर में से जिस शरीर के रूप में परिणत इसका भूत सूक्ष्म हो जाए ऐसा संकल्प किया, वह शरीर उसे इस शरीर को छोड़ने से पहले दिखेगा स्पष्ट रूप से, और देख करके फिर उसे मैं के रूप में पकड़ लेगा। ये जो जीव का अहंकार है वो कभी निरालंब नहीं होता, अहंकार एक वृत्ति है ना, वृत्ति के लिए कोई ना कोई आलंबन चाहिए, आश्रय चाहिए, बिना आश्रय की वृत्ति नहीं बनती। तो उसका वो अहम, ये जो आलम अहंकार है, अहम इत्याकारक वृत्ति, वो अभी तक तो इस शरीर को पकड़े रखी है, और वो जैसे ही ईश्वर संकल्प करते हैं तो उसको वो शरीर दिखेगा, उस शरीर को मैं के रूप में पकड़ लेगा और फिर इस शरीर में से अहंता निकल जाती है। इसलिए शास्त्र में बृहदारण्यक उपनिषद में शरीर इस जीव इस शरीर को कैसे छोड़ता है इसके लिए उदाहरण बताया है तृणजलुका का। तृणजलुका माना जाता है एक कीड़ा है जो जमीन पर न चल करके तृण पर ही चलता है, घास पर ही चलता है, तो किसी घास को उसने पकड़ लिया तो फिर दूसरे घास पर जाना हो तो पहले अपने शरीर के अग्रभाग से जिस तृण पर जाना है उस तृण को ठीक से पकड़ लेता है, और जैसे ही शरीर के अग्रभाग से वह आगे वाला तृण पकड़ में आता है तब अपने शरीर के पृष्ठभाग से पहले से आश्रयभूत शरीर का जो तृण था उसको छोड़ देता है। पहले दूसरे आश्रय को उसने पकड़ा और पहला आश्रय बाद में छोड़ा, ऐसा करता है ना। ऐसे ही यह जीव भी क्या करता है, अपने अहंकार को इस शरीर में से तभी समेटता है, हटाता है, जब पहले भावी शरीर में अपनी अहंता के पैर अच्छी तरह से जमा लेता है, जड़ें उसको ईश्वर दिखा देते हैं और ये अहम के रूप में पकड़ लेता है, फिर इसमें से छोड़ देता है। ये सारी सूक्ष्म प्रक्रिया है। वो मरने वाले के पास में संबंधी बैठे हुए हैं तब भी उनको इस शरीर से निकल जाएगा तब भी नहीं दिखता, वो भूत सूक्ष्म भी नहीं दिखता, वो अतीन्द्रिय है, और सूक्ष्म शरीर भी अतीन्द्रिय है, और शरीर में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में से निकलता है, ये सारी प्रक्रिया घटती है हृदय में मरने वाले के। और फिर जाते समय शरीर संबंधी, ऐसे शरीर में तो बहुत सी नाड़ियां हैं, 72,72,10,102 नाड़ियां ऐसी बताई हैं प्रश्न उपनिषद में नाड़ियों की संख्या। लेकिन इन नाड़ियों में प्रधान नाड़ियां हैं 101, वो सीधे शरीर से निकली, क्या नाम, हृदय से निकली हुई, शतंचयका हृदयस्य नाड्य, ऐसा नाड़ी का वर्णन करते समय छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या के प्रकरण में आया 8वें अध्याय में। 101 नाड़ियों में से एक प्रधान नाड़ी है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। यह उपासक जिनको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होनी होती है उन्हीं के प्राण इस सुषुम्ना नाड़ी से निकलते हैं, उसी का सुषुम्ना नाड़ी से निर्गमन होता है, और बाकी को तो फिर उन 100 नाड़ियों में से किसी न किसी नाड़ी से निकलना होता है। यहां कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाला उपासक, जिसे निश्चय है कि मुझे तो ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ भाव की ही प्राप्ति होनी है, ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होनी है, वह अपने इष्ट देव को अपने द्वारा किए गए कर्म उपासना का जो फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले उत्तरायण मार्ग से ले जाने की प्रार्थना अंतिम मंत्र में उपासक कर रहा है। कृतम स्मर इत्यादि से तो एक प्रकार से भावी प्रारब्ध इसने बनाया और बना करके ईश्वर को कह रहा है कि आप मेरे किए हुए का स्मरण करिए। अब अभी उपासक शरीर छूटा नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आप उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति कराइए। 18वें मंत्र का उच्चारण करिए। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युध्यस्मद्जुहुरानमेनो, भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तो बृहदारण्यक उपनिषद में सूत्रात्मा की ही, हिरण्यगर्भ की ही वैश्वानर अग्नि के रूप में भी उपासना बताई है। तो जैसे ओम खम ब्रह्म इस वाक्य ने ओंकार रूपी प्रतीक में सूत्रात्मा की उपासना बताई थी, खम ब्रह्म की उपासना बताई थी, इसलिए पूर्व मंत्र में ओंकार खम ब्रह्म का प्रतीक होने से ओम ऐसा संबोधित किया था। ऐसे वैश्वानर अग्नि भी प्रतीक है ब्रह्म की उपासना का, इसलिए अग्नि के नाम से भी उपासक अपने उपास्य का संबोधन कर रहा है कि हे अग्ने, ये उपास्य का संबोधन है। पहले कई एक नामों से संबोधन किया था, पूषण एकर से आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष का ही, ऐसे ओम क्रतो, तो उन्हीं में से एक अग्ने इस नाम से भी संबोधन है कि हे अग्ने अस्मान राये सुपथा नय, एक अन्वय है। अस्मान यानी मुझे, आप राय यानी मेरे द्वारा किए हुए कर्म उपासना का फल भोगने के लिए सुपथा नय यानी शोभन मार्ग से ले जाओ। हे अग्नि, आप मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्म उपासना का फल भोगने के लिए सुंदर मार्ग से ले जाइए। नए का अर्थ ले जाइए, मुझे का मतलब यहां सुपथा में पथा शब्द का तौर से मार्ग, और सु ये एक विशेषण मार्ग का दे करके बताया जा रहा है कि जो शोभन मार्ग है, और मार्ग में शोभनता क्या है, सुंदरता क्या है, ऐसा वो मार्ग सुंदर कहलाता है जिस मार्ग से जाने के बाद में फिर बार बार आना जाना न पड़े। गीता के 8वें अध्याय में शुक्ल और कृष्ण नाम से दो मार्ग बताए हैं ना, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्य अनावृत्तिम। इन दो मार्गों में से एक से जाकर के अनावृत्ति को प्राप्त कर लेता है और दूसरी से आवृत्ति प्राप्त होती है। वो कौन है तो दक्षिणायन मार्ग भले ही स्वर्ग लोक ले जाता है, लेकिन इसी कल्प में स्वर्ग में जाने के बाद न जाने कितने बार आ जाकर के लौटना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति। और शुक्ल मार्ग कहते उत्तरायण मार्ग को, उत्तरायण मार्ग से जाने वाला ब्रह्मलोक जाता और फिर यहां पर इसी कल्प में वापस नहीं आता। एक बार ब्रह्मलोक में प्रवेश मिल गया, ब्रह्मलोक की नागरिकता प्राप्त हुई, तो वह जीव आने जाने से इस कल्प के लिए तो छूट गया, तो इसलिए उसे शोभन मार्ग कहा जाता है, जिस मार्ग से आकर के पुनः जाने के बाद में पुनः वापस न आना पड़े, वो है सुंदरता उस मार्ग की। उत्तरायण मार्ग सुपथा का अर्थ हो जाएगा उत्तरायण मार्ग। उत्तरायण मार्ग से जो चला जाता है ब्रह्मलोक में, उसे फिर वापस नहीं आना पड़ता इस संसार में, इसलिए वो सुपथा है, शोभन मार्ग है। और दक्षिणायन मार्ग से गया हुआ वापस आना पड़ता है, इंद्र को भी कई बार आना जाना पड़ता है। एक बार बताया ना, ये पुण्य दक्षिणायन मार्ग से समझ लो, यहां पर शास्त्र भीत केवल कर्म करके चले भी जाए, मनुष्य जन्म में रह करके सौ यज्ञ करने वाला कहते इंद्र बन जाता है, और इंद्र को भी अपना इंद्रत्व तो छोड़ करके फिर इस लोक में आकर के मनुष्य या सामान्य जीव बनना पड़ता है पृथ्वी का। कहते हैं एक लोमस नाम के ऋषि थे, लोमस नाम के ऋषि के शरीर में बहुत लोम थे, इसलिए उनका लोमस नाम हुआ था। जो रोए होता है ना, बहुत सी थे, और उनकी आयु काफी थी लंबी। कहते एक इंद्र बदल जाता था तो एक रोम उनका गिर जाता था, और जितने रोम है वो सारे रोम जब गिर करके समाप्त हो जाए तब उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, इतनी आयु थी। तो एक बार कहते हैं एक इंद्र नए नए बन गए और वहां गए अमरावती में, और देखा कि ये महल तो पुराना हो गया है, इसको गिरा करके नया बनाया जाए अच्छी तरह से। तो नया बनाने के लिए अनुमति लेने के लिए चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रस्ताव रखा कि अब ये महल थोड़ा मुझे नया बनाना है, आप अनुमोदन करिए। कहा ठीक है, पहले नक्शा वगैरह बना लो और देख लो सारे विश्व में घूम करके किसका कैसा महल बना हुआ है, और उसके बाद नक्शा बना लो और नक्शा दिखा दो, फिर मैं पास कर दूंगा। तो इंद्र के साथ नारद जी को भी नारद विष्णु ने कह दिया कि आप तो विश्व में भ्रमण करते रहते हैं, ले जा करके इंद्र को दिखा दो किसका कैसा बना हुआ है महल, फिर इंद्र देख लेंगे, पसंद करेंगे, वैसा बनाया जाएगा। तो सब जगह घुमाया नारद जी ने इंद्र को, फिर पृथ्वी पर भी लाया, पृथ्वी करके भी सब राष्ट्रपति के जो महल हैं सब दिखा दिए, कहीं कहीं के सब राष्ट्रों के। फिर गंगा किनारे आए तो जाते समय गंगा किनारे एक आकाश मार्ग से ही जाते हैं देवता, तो देखा एक पर्ण कुटी है और उसमें लोमस नाम के ऋषि बैठे हैं। तो नारद जी ने कहा कि यहां एक महान तपस्वी ऋषि रहते हैं, आप चाहो तो इनका दर्शन कर लेते हैं और बाकी इसके बाद फलाना महल दिखाएंगे आपको। तो कहा चलो संत का दर्शन कर लेंगे। तो उतरे तो लोमस ऋषि बैठे थे पर्णकुटी में, आए हुए नारद जी और इंद्र का स्वागत किया, उन्होंने बैठने का आसन दिया और पूछा नारद जी को क्षम कुशल। नारद जी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, अभी उस स्थान से आए, इस स्थान से आए और अब आगे जा रहे हैं फलाने स्थान पर, इस उद्देश्य से कि ये नए नए इंद्र बने हैं अभी और इनको अपने स्वर्ग में नया महल बनाना है, तो पहले दिखा रहे हैं किसका कैसा बना हुआ है। ठीक है, दर्शन के बाद में जा रहे थे तो इंद्र ने कहा कि महात्मा है, तपस्या करते हैं, पर्णकुटी तो काफी पुरानी दिख रही है और कहीं कहीं बीच बीच में छेद भी दिख रहे हैं, तो इनको एक पक्का कमरा बना करके दिया जाए, क्या हर्जा है ना। तो प्रस्ताव रखा कि महाराज आप तो ऐसे पर्णकुटी में रह रहे हैं, मैं सोचता हूं कि बारिश भी आती होगी, धूप भी लगती होगी, यहां से धूप भी आ रही होगी, एक पक्का कमरा आपके लिए बना देते हैं। तो कहे कोई बात नहीं है, अब आयु बची ही कितनी है, इसी कुटिया में तो मैंने बहुत सी आयु निकाल ली और थोड़ी बाकी है, वो निकल जाएगी इसी से। कहा कितनी आयु अभी बाकी आपकी, तो उन्होंने दिखा दिया एक तरफ का पैर और हाथ की, देखो ये देख रहे हो इसमें बाल बहुत से झड़ गए इसके और रोम, और इसमें बहुत से हैं। कहे इतने आयु तो मेरी समाप्त तो हुई है, जब एक इंद्र बदल जाता है तो एक रोम गिर जाता है, तो अभी इधर के गिरने बाकी हैं, जब ये पूरी गिर जाएंगे तो मेरी आयु समाप्त तो हो जाएगी, एक इंद्र बदलने के बाद एक गिरना है। तो इंद्र ने देखा ये तो असंख्य अभी रोम बाकी है, न जाने कितने इंद्र आएंगे जाएंगे, तब तक ये महात्मा बने ही रहेंगे और इसी कहते हैं इसी कुटिया में तब तक रहूंगा, इस कुटिया से तो मेरा महल बहुत अच्छा है और कितने दिन के लिए रहना है। तो उन्होंने तो फिर नारद जी ने जैसे सुनाया और आगे फिर इंद्र समझ गए। नारद जी कहते आगे का देखने के लिए चलते हैं महल, कहते नहीं मुझे अब नहीं देखना है, महात्मा की इतनी लंबी आयु है तब भी कहते हैं कि इसी में निकल जाएगी, तो मेरा तो कितना इनके सामने जीवन है, ऐसे निकल जाएगा। का मतलब इंद्र बनने के बाद भी आना जाना पड़ता है, तो जो द्वितीय मार्ग है कृष्ण गति नामक दक्षिणायन मार्ग, उस दक्षिणायन मार्ग से जाकर के स्वर्ग में स्वर्ग के नागरिक बन भी जाते हैं, तो स्वर्ग का अधिपति भी कई बार आता जाता है, तो सामान्य नागरिक को तो इसके बीच में कई बार आना जाना पड़ता है। छीने पुण्य मरते लोकम विशंति के अनुसार, तो उसे शोभन मार्ग नहीं कहा जाता। और यहां पर उपासक कह रहा है कि सुपथा नय, आप मुझे सुंदर मार्ग से ले जाइए। तो उपासक के बुद्धि में सुंदर मार्ग है उत्तरायण मार्ग। कहे उत्तरायण मार्ग से क्यों जाना चाहते हो, तो कहते राय, राय कहते हैं धन को, और धन कहते हैं ये दैव वित्त है और मानुष वित्त भी। मानुष वित्त का प्रयोजन होता है कर्म, वैदिक कर्म। मैंने वैदिक कर्म का अनुष्ठान किया है और दैव वित्त है उपासना, और इन उपासना और कर्म का जो फल है उसे यहां पर लक्षणा से रय शब्द से लेना, तो कर्म फल का उपभोग करने के लिए राय शब्द का अर्थ है। मेरे द्वारा अनुष्ठित जो कर्म उपासना है उसका फल ब्रह्मलोक में भोगा जाता है, और उस कर्म उपासना के फल भोग के लिए मुझे आप उत्तरायण मार्ग से ले जाइए। अग्ने नये सुपथा राय अस्मान, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सबके कर्मों को जानते हो, तो मेरे कर्म को भी जानते हो। और एक संबोधन है कि हे देव, यानी आप देव हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, और विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। विश्व कहते हैं समस्त कर्म, वयुन शब्द का अर्थ है कर्म, वयुनानि का अर्थ है कर्माणि, सभी संसार के प्राणियों के कर्मों के आप विद्वान हैं यानी ज्ञाता हैं। वयुनानि विद्वान यानी कर्म के ज्ञाता हैं, और एक दो कर्म के ज्ञाता नहीं, विश्वानि वयुनानि का मतलब समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं, प्राणी मात्र के कर्मों को आप जानते हैं। क्यों, तो शिवमेमन स्तोत्र में कहा गया है न परमेश्वर को, सभी प्राणियों के कर्म को क्यों याद रखते हैं भगवान, कहते क्रतो सुप्ते जागृत तुमसी फलदाने क्रतुमताम। कहते हैं प्राणी तो कर्म करते हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन आप तो जगते रहते हैं यानी उन प्राणियों ने किए हुए कर्मों को याद रखते हैं, स्मरण में रखते हैं। क्यों, कहते हैं किए हुए कर्म का फल कर्ताओं को भुगवाने के लिए। क्रतो सुप्ते जागृत तमसि फलदाने क्रतुमताम, प्राणियों ने किए हुए कर्म का फल भुगवाने के लिए आप जब तक कर्म का फल ठीक से प्राणियों को नहीं भुगवाते तब तक उसके याद रखते हैं। भगवान एक ऐसे कंप्यूटर हैं पूरे संसार के कि प्रत्येक जीव की एक एक फाइल है उसमें, और वो उस फाइल खोल करके देखते रहते हैं हमेशा, और याद रखते हैं कि इतने करोड़ वर्ष पहले इस जीव ने ये कर्म किया था, उसका ये फल इस समय इस देश में भुगवाना है उसे, और इसको निमित्त बनाना है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणियों के कर्मों को आप याद रखते हैं, जानते हैं। यही बात एक प्रकार से वेद में यहां पर इन शब्दों से कही जा रही है, क्रतो सुप्ते जागृत तुमसि फलदाने क्रतुमताम। शिव मेमन स्तोत्र में इन शब्दों से जिसे कहा कि ईश्वर कर्म फल भुगवाने के लिए प्रत्येक प्राणियों के कर्म को याद रखते हैं, ये वेद में यहां पर लिखा है कि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव आप समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, जानते हैं। तो मेरे भी समस्त कर्मों को आप जानते हैं, सबके कर्मों को जानते हैं, तो मेरे भी कर्म को जानते हैं। तो इस जन्म में तो मैंने साइज भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि पहले जन्म में कोई मेरे से ऐसा पाप हुआ हो, तो आप अनुग्रह मूर्ति हैं, उसे आप मेरे से दूर करिए उस पाप कर्म को। ये यहां पर प्रार्थना है कि योधि अस्मत जुहुरानम एनह, एनह कहते हैं पाप को, और जुहुरानम का मतलब कुटिल जो पाप है, जुहुरान कहते हैं कुटिल को, वक्र पाप को। पाप भी दो, वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है। पाप का अर्थ होता है दुख का हेतु, दुख का हेतु पाप है। तो जो धर्म है, जन्म का हेतुभूत पुण्य कर्म, वो भी तो एक प्रकार से अपना फल भुगवाने के लिए जब शरीर दिलाएगा, सुख भुगवाने के लिए संसार अंतःपाती, तो शरीर धारण करते समय गर्भवास में रहना ही पड़ेगा। भले ही उत्कृष्ट जन्म मिलना हो, लेकिन गर्भ की यातना तो सहन करनी ही पड़ेगी। जन्म लेते समय होने वाला जो कष्ट है उतना तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म का फल जो सुख है, वैषयिक सुख, वह भी दुख से सम्मिश्रित है। इसलिए धर्म को भी उतने अंश में थोड़ा सुख भुगवाता है, सुख भुगवाता है तो सुख के साथ साथ दुख भी रहता ही है। इसलिए दुख का कारण होने से वो भी पाप है, लेकिन उसे जुहुरान पाप नहीं कहा जाता। लेकिन जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, पाप ही पाप है, जिसका जो कर्म नारकीय योनि की प्राप्ति का हेतु बन रहा हो, कीट पतंग आदि योनि की प्राप्ति का हेतु बन रहा हो, तो उसका फल भी दुख और जन्मादि के कारण होने वाला भी दुख, दुख ही दुख है। ऐसे पाप कर्म को जुहुरान येन कहा जाता है, यानी कुटिल जो पाप है। ऐसा यदि संचित में कहीं हो भी पड़ा हुआ, तो उसे आप मेरे से अलग करिए। यू योधि का अर्थ होता है अलग कर लो, हटाइए, दूर करिए। किसको? तो जुहुरान में ये न का मतलब कुटिल पाप को। किससे दूर करना है? तो अस्मत यानी मेरे से। तो मेरे से सुख की प्राप्ति का, प्राप्ति में बाधक जो पाप है, उस पाप को दूर करिए। बाकी की चर्चा और थोड़ी सी है इस मंत्र पर, हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 26 नवंबर सोमवार। अब शांति पाठ होगा। हरि ओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।